संसार में असंख्य परंपराएं चली आ रही है। वो परंपराएं कब चालू हुई, किसने चालू की, कब चालू की, कब चालू हुई, किसी को कोई पता नहीं। बस चल रही है। संसार में कई सारी रीतियां हैं, कई रीति रस्म है, परंतु उनका आगाज कहां से हुआ, उद्गम स्थान कौन सा है, किसी को कोई खबर नहीं। भारत वर्ष में असंख्य त्योहार है, असंख्य पर्व है। वो क्यों मनाए जाते हैं, कैसे मनाने चाहिए, किस लिए मनाए जाते हैं, उनका गूढ़ अर्थ क्या है, उनका आध्यात्मिक अर्थ क्या है, किसी को कोई खबर नहीं। जो पूर्वजों ने किया है, जातिगत जो चल रहा है, वही चल रहा है। कहानी सबने सुनी है, कभी यहां पर भी सुनाई है शायद। किसी आश्रम में एक महात्मा रहते थे और उस महात्मा को प्यार हो गया किससे, एक बिल्ली से। महात्माओं को भी कभी कभी प्यार हो जाता है किसी किसी से, तो उस महात्मा को भी प्यार हो गया एक बिल्ली से। परंतु जब भी ध्यान में बैठते थे तो बिल्ली तंग करती थी, कभी यहां से कभी वहां से। तो उन्होंने एक नियम बनाया कि जब भी ध्यान में बैठे तो अपने शिष्यों को कहा कि बिल्ली को झाड़ से लटका देना, बांध देना बिल्ली को झाड़ से। तो जब भी ध्यान में बैठते तो बिल्ली को उसे एक घंटे के लिए झाड़ से लटका देते थे। एक दिन बिल्ली की मृत्यु हो गई, तो शिष्यों ने बाजार से दूसरी बिल्ली लेके आए और फिर अब इस बिल्ली को लटकाना चालू किया। कालांतर में जो महात्मा जी थे उनकी भी मृत्यु हो गई और दूसरा शिष्य महात्मा बना। फिर भी बिल्ली को लटकाना, बांधना चालू था। ऐसे कई सारी पीढ़ियां गुजर गई, दूसरी बिल्ली भी मृत्यु को प्राप्त हुई। उसके बाद नई बिल्ली आई, नए महात्माएं आए और एक समय के बाद यह नियम बन गया कि जो महात्मा बना और जब भी वो ध्यान में बैठा तो बिल्ली को लटकाया जाए। परंपराएं जो है इसी तरह है, चालू है, कब से चालू है कुछ पता नहीं। कई सारे महत्वपूर्ण कार्य होते हैं, उनका फिर यादगार बनता है। वो उन यादगारों में श्रद्धा होती है, प्रेम होता है, परंतु वह भी कालांतर में श्रद्धा और प्रेम समाप्त हो जाता है और बच जाती है निपट नीरा परंपराएं, खोखली सी। भारतवर्ष में जो हम कह रहे थे, कई सारे त्योहार है, कई सारे पर्व है, महत्वपूर्ण दिवस है। उनमें से एक महत्वपूर्ण दिवस है शिवरात्रि, महाशिवरात्रि जिसको कहते हैं, कालरात्रि भी इसे कहते हैं। संसार में शिवरात्रि बहुत धूमधाम से मनाई जाती है, बहुत कुछ करते हैं वहां पर। बाबा उस शिवरात्रि का गूढ़ार्थ क्या है वह समझा रहे हैं, वो क्यों मनाई जाती है और क्या उसका अर्थ है, उस पर प्रकाश डाल रहे हैं। तो आज की जो मुरली है वो किस पर है, शिव के अवतरण पर, महाशिवरात्रि पर। मुरली बहुत ही गहरी है, कई सारे ज्ञान के बिंदुओं को बाबा ने प्रकाशित किया है। शिवरात्रि का अर्थ ही है क्या, अंधकार, अंधकार में प्रकाश का आगमन। रात्रि, रात्रि अर्थात अंधकार, तामस, तिमिर, तारीकी। इस रात की तारीकी में शिव का अवतरण। संसार में जो भी जन्म दिवस मनाते हैं, अगर रात्रि में भी किसी का जन्म हुआ तो भी जन्म दिवस ही होता है, परंतु यहां पर एकमात्र शिव का ही ऐसा है कि जिसे शिव रात्रि कहा जाता है। ये अलौकिक अद्भुत सा जन्म दिवस है, परमात्मा अजन्म है परंतु फिर भी जन्म दिवस। तो आज की मुरली में बाबा ने क्या क्या कहा, माताओं की तरफ से चालू करते हैं। बुद्धि की लाइन क्लियर तो टचिंग आएगी। और साधन टाइम पर धोखा दे सकते हैं तो हमारी साधना उन पर निर्भर ना हो। और प्रैक्टिस करनी है विदेही बनने की, अशरीरी बनने की, आत्माभिमानी बनने की। आज कौन किससे मिल रहे हैं? त्रिमूर्ति शिव किससे मिल रहे हैं? शालिग्राम बच्चे या शालिग्राम बच्चे? शालिग्राम या शालिग्राम? नागेश भाई, शालिग्राम या शालिग्राम? बाबा शालिग्राम कहते हैं, शास्त्रों में शालिग्राम है। शालिग्राम बच्चों से मिलन मना रहे हैं। ये शालिग्राम क्या होता है? शालिग्राम क्या होता है? संसार शालिग्राम किसे समझता है? मिट्टी के पत्थर। और कैसे होते हैं? अंडाकार। शालिग्राम की पूजा कौन करते हैं और शिव की पूजा कौन करते हैं? शिवलिंग की पूजा करने वाले कौन और शालिग्राम की पूजा करने वाले कौन? एक ही है या अलग अलग है? कौन है? जो शैव है, जो शिव को मानने वाले हैं, वो शिवलिंग की पूजा करते हैं, और जो विष्णु के भक्त है, जो वैष्णव है, वो शालिग्राम की पूजा करते हैं। क्योंकि शालिग्राम प्रतीक संसार में समझा जाता है किसको? विष्णु को, श्री लक्ष्मी और श्री नारायण को, नारायण का प्रतीक है वो। शास्त्रों में बहुत ही अगड़म बगड़म अद्भुत सी कहानियां लिखी हुई है, मनोमयी कल्पित ऐसी कहानियां जिसका विवेक बहुत जबरदस्त विरोध करता है। यहां से ईट ली और यहां से रोड़ा लिया, और भानामती का कुंबा जगदीश भाई ने अपने लेख में लिखा है, एक भानामती का कुंबा बनाया है, वो भी रेत पर खड़ा हुआ, बेसिर पैर की बातें। ऐसी ऐसी अद्भुत सी कहानियां लिखी है और संसार के सभी लोग उसे माने चले जा रहे हैं। बच गई है केवल परंपरा है। यहां तक कि अच्छे अच्छे जो शिक्षित है, पढ़े लिखे है, इंजीनियरिंग स्टूडेंट और मेडिकल के स्टूडेंट भी एग्जाम जाते जाते बहुत कुछ करके जाते हैं मंदिरों में। तो इसी तरह शालिग्राम बहुत ही अद्भुत और बहुत ही, अगर कोई वैज्ञानिक बुद्धि वाला, तर्क बुद्धि वाला व्यक्ति होगा तो हंसी आएगी उसको, ऐसी कहानियां लिखी हुई है उसके बारे में। गोप नाम का, सुदामा नाम का कोई पार्षद स्वर्ग में दिखाया, राधा जी ने उसे शाप दे दिया, धरती पर जन्म लिया किसी दैत्य के घर में जिसने 1,00,000 साल तपस्या की, और फिर उसका नाम शंखचूड़ रखा गया। ऐसी अद्भुत सी कहानियां है। उसका विवाह हुआ किसके साथ? तुलसी के साथ। तुलसी जो कि पौधा है, उसे किस पे रूपांतरित कर दिया? स्त्री में। और फिर देवताओं को पराजित किया, स्वर्ग का सिंहासन लिया, सारे देवताएं गए किसके पास? शिव और विष्णु के पास। विष्णु ने, विष्णु की जबरदस्त ग्लानी, ऐसी ग्लानी शायद पूरे शास्त्रों में और कहीं नहीं है जो विष्णु की ग्लानी जबरदस्त की है। विष्णु ने सती का, तुलसी का सतीत्व भंग किया, ऐसी कहानी लिखी है। इसके लिए बाबा कहते हैं ना, मेरी देवताओं की, कृष्ण की, सबकी ग्लानी की है। और फिर शिव ने वो जो शंखचूड़ है उसका वध कर दिया, और इधर तुलसी ने विष्णु को शाप दे दिया कि क्या बन जाओ, पाषाण। और फिर तुलसी देवलोक को प्राप्त हुई और वो खुद क्या बन गई, नदी बन गई, और उस नदी पे वो शालिग्राम बैठ गया। और तब से लेकर तो इन शालिग्राम की वैष्णव जितने भी है विष्णु के भक्तों ने पूजा चालू कर दी, और यहां तक कि तुलसी और विष्णु की तुलसी विवाह करते हैं ना कई लोग, वो भी चालू हो गया। इस तरह से कई सारी परंपराएं संसार में चली आ रही है। अच्छे अच्छे घर में तुलसी विवाह होता है। कृष्ण विष्णु कहो कृष्ण कहो, वो विवाह दिखाया हुआ है। और फिर वो शंख का भी है, जो शंख चूर था उसका शंख बन गया, और वो शंख को शंख से जल चढ़ाते हैं। तो इस तरह से संसार में शास्त्रों में इतनी सारी कहानियां हैं, उसका कोई अर्थ नहीं। शालिग्राम वास्तव में कौन है? शालिग्राम वह आत्माएं हैं जिन्होंने परमात्मा को जाना। शालिग्राम वह आत्माएं हैं जिन्होंने पवित्रता का व्रत धारण किया। इस संगम युग में गुप्त वेश में आए हुए भगवान को पहचाना, ऐसी जो आत्माएं हैं वह शालिग्राम आत्माएं हैं। तो आज त्रिमूर्ति शिव किसको देख रहे हैं? ऐसी प्यारी प्यारी, अति प्यारे, अति मीठे, ऐसे जो शालिग्राम बच्चे हैं उनको देख रहे हैं। यह दिवस भी कैसा है? विशेष दिवस है। यह जन्मदिन कैसा है? न्यारा और प्यारा। सारे इतिहास में, सारे सृष्टि में, सारे कल्प में ऐसा जन्मदिन आज तक किसी का नहीं हुआ, किसी समय पर नहीं हुआ, किसी व्यक्ति का नहीं हुआ है। ऐसा ये अद्भुत सा जन्म दिवस है जिसकी बाबा मुबारक दे रहे हैं। वो हमारा जन्मदिन दिवस मनाने आया है या हम उसका? दोनों आए हैं। तो बाबा ने कहा तुमको खुशी कितनी है इस बात की? कितनी खुशी है? कोई पूछे कितनी खुशी है? सागर इतनी, आकाश इतनी, गगनातीत और सागरातीत हमारी खुशी है। सागर कुछ भी नहीं है इस खुशी के आगे। इस खुशी का कोई बैरोमीटर नहीं है, मापा नहीं जा सकता है, तोला नहीं जा सकता। इस खुशी को अथाह है, ऐसी खुशी हमको प्राप्त हुई है। तो इस अलौकिक जन्म दिवस पर बाबा गीत गा रहे हैं। कौन सी? वाह वाह की सीरीज शायद यहीं से चालू हुई या पहले से ही चालू थी, यहां से जोर पकड़ा वाह क्या कह रहे हैं बाबा? वाह लाडले बच्चे, वाह सिकिला दे बच्चे, वाह अलौकिक जन्म दिवस, वाह अलौकिक बर्थडे मनाने वाले बच्चे। गुणगान कर रहे, भगवान गुणगान कर रहा है और बच्चे भी गीत गा रहे। कौन से? वाह बाबा वाह, आज की मुरली से कौन से गीत गा रहे बच्चे? नाचना और गाना, कौन सा गाना? स्वयं की महिमा, बाप की महिमा के अलौकिक गीत, अपने अलौकिक गीत और बाप की महिमा के। और काम ही क्या है बाबा ने कहा? नाचना और गाना। ये नए धर्म की बाबा ने स्थापना की है। ऐसा अद्भुत धर्म मानव इतिहास में कभी जन्म नहीं हुआ है, ऐसे धर्म का। इस धर्म का आविर्भाव अभी ही हुआ है। ऐसी ये सन्यास की परंपरा है अद्भुत सी, नाचते और गाते हुए सन्यासी, नाचते और गाते हुए तपस्वी, नाचते और गाते हुए अवतार, नाचते और गाते हुए मसीहा। तो नाचना और गाना बाबा ने किया, और ब्राह्मणों का काम ही क्या है? नाचने का धर्म है ये, गाने का धर्म है। ऐसी अद्भुत परंपरा का आगाज परमात्मा अवतरण पर होता है। भगवान जब आते हैं तो एक नई परंपरा की शुरुआत होती है, नाचने की और गाने की। स्थूल नहीं है पर इसमें कुछ भी, सब कुछ। और जो तुम्हारा आवाज है वो कहां तक पहुंचता है? क्या कहा बाबा ने? बाप दादा तक तुम्हारे मन का आवाज पहुंचता है। बाप का आवाज सब तक पहुंच रहा है और तुम्हारे मन का आवाज, दिल का आवाज, हृदय से निकला हुआ आर्तनाद उस तक पहुंचता है। परंतु वो कहां से निकला हो? दिल से, अंतस चेतना से निकली हुई वो आवाज हो, जो कि इस पांचों तत्व को पार कर, सूक्ष्म वतन को पार कर सीधा परम धाम में पहुंचती है। ऐसी दिल की आवाज, केवल दिल की आवाज ही उस तक पहुंचती है, बाकी आवाजें नहीं। केवल मुख का सौदा नहीं है, ये सौदा है दिल का। इसी मुरली में बाबा ने कहा है सच्ची दिल और साफ दिल। हमेशा बाबा तीन दिलों की बात करते हैं, सच्ची दिल, साफ दिल और तीसरी बड़ी दिल। तीन दिलों की बाबा हमेशा बात करते हैं। ऐसी दिल वाले जो है उनकी आवाज ऊपर तक पहुंचती है। बाइबल में एक अद्भुत सा वाक्य लिखा हुआ है, नॉट एवरी वन हु कमेथ एंड सेज लॉर्ड लॉर्ड बट ही दैट डूएथ द विल ऑफ माय फादर शैल एंटर द किंगडम ऑफ हेवन। हर एक नहीं जो केवल आके कहता है हे प्रभु हे प्रभु, उनकी आवाज नहीं, बट ही दैट डूएथ द विल ऑफ माय फादर, जो मेरे बाप की इच्छा है, श्रीमत है, आज्ञा है, उसका जो पालन करता है, शैल एंटर द किंगडम ऑफ हेवन, वही स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर सकता है, बाकी नहीं। केवल नारे लगाने वाले नहीं। तो बाबा वाह वाह के गीत गा रहे और बच्चे भी गीत गा रहे, बाबा भी गीत गा रहे। संसार की करोड़ों आत्माओं से में से चुनी हुई आत्माएं भाग्यवान है, और भाग्यवान पद्मा पदम भाग्यवान है और रहेंगे। और दो वरदान दिए हैं बाबा ने आज वहीं पर, कौन से? अमर वरदानी और अमर भाग्यवान, आधा कल्प जन्म जन्म, ये दो वरदान है, इस पर चिंतन करना। पहला वरदान अमर भाग्यवान, अमर भाग्यवान की क्या परिभाषा है इसके ऊपर मनन करना। अमर भाग्यवान, अमर वरदानी, दोनों ही चिंतन का विषय है। फिर बाबा ने तिलक लगा दिया एक, कौन सा तिलक? तिलक ऑफ अवेयरनेस, स्मृति का तिलक लगाया है, जन्मते ही तिलक लगाया। और एक वरदान और एक दिया है जो आगे कहा बाबा ने, कौन सा? संपूर्ण पवित्र भव। एक वरदान भी दिया और श्रेष्ठ वर्षा दिया, तिलक दे दिया, स्मृति का तिलक। और बाबा हमें किस रूप में देखना चाहते हैं? खिला हुआ गुलाब के रूप में देखना चाहते हैं, मुरझाया हुआ नहीं, कुंभलाया हुआ नहीं, दुखी नहीं, सदा ही आनंदित। ऐसा आनंद की जिस खुशी वर्णनातीत है, जो अनिर्वचनीय है, वर्णन नहीं कर सकते, ऐसी खुशी, ऐसा खिला हुआ गुलाब के रूप में बाबा हमें देखना चाहते हैं। तो हमें भी अपनी स्थिति को ऐसा बनाना है, खिला हुआ गुलाब, उसमें सौंदर्य भी है, तो उसमें क्या है? सुगंध भी है, सबको आकर्षित करने वाला। गुलाब अगर जंगल में भी खिल जाए तो किसी को पुकारता नहीं है, किसी को बुलाता नहीं है, किसी को कहता नहीं है कि आकर मुझे देखो, यात्री स्वतः ही आ जाते हैं, सुगंध स्वतः ही खींच कर लेके आती है। वो कहता नहीं है मुझे देखो, उसका सौंदर्य ही ऐसा अप्रतिम है कि दृष्टि ठहर जाती है। आत्मा की स्थिति भी ऐसी हो कि दृष्टि ठहर जाए, ऐसा खिला हुआ गुलाब, मुरझाना नहीं। मुरझा हुआ गुलाब क्या करता है? किनारा, बाप नहीं करते, वो स्वतः ही किनारे हो जाते हैं। तो जीवन का लक्ष्य क्या है? निरंतर खुशी, खुशी की अविरल धारा निरंतर बहती रहे, खुशी का झरना निरंतर बहता रहे, खुशी की बांसुरी निरंतर बजती रहे, मौज में रहने वाले। याद प्यार में कहा ना, ऐसे मौज में रहने वाले, बाप के समीप रहने वाले, सदा मौज में रहने वाले। मुश्किल यहां नहीं है, मुश्किल तब होता है जब रास्ते से भटक जाते हो, दिग्भ्रमित हो जाते हो, कहीं और चले जाते हो, तब मुश्किल लगता है। इस ज्ञानी जीवन में मुश्किल कुछ नहीं, ब्राह्मण जीवन में मुश्किल कुछ नहीं। योग भी क्या है? सहज है, गीत है, संगीत है, एक नाच है, आत्मा और परमात्मा का मिलन, महान मिलन। ये भी जैसे कि एक नृत्य है, इतना सहज है, जो कि सन्यासियों के लिए कितना मुश्किल था, कितनी यातनाएं दी अपने देह को, फिर भी नहीं मिल पाए प्रभु से, और यहां सहज प्राप्ति हुई है। तो बाबा कह रहे खिला हुआ गुलाब, अगर अगर मुश्किलातों का सामना करना पड़े तो भी मुरझाने वाले नहीं, तो भी हार मानने वाले नहीं। गुलाब की तरह तो रहना है, खिला हुआ तो रहना है, परंतु आंधी आएगी, तूफान आएंगे, बारिश होगी, तो क्या करोगे? गुलाब छाता लेकर। एक बहुत ही साधारण सा फूल था, ईंट की आड़ में दूसरे फूलों के साथ, जो कि जिसने कभी बारिश का मुंह, सूरज का मुंह नहीं देखा, जिसने कभी बारिश नहीं देखी, कभी आंधी नहीं देखी, बड़ा ही सुरक्षित एक फूल था, परंतु साधारण सा फूल था। उसके हृदय में भी एक दिन इच्छा उत्पन्न हुई कि मैं गुलाब का फूल बन जाऊं, और परमात्मा से प्रार्थना करने लगा वो फूल, क्या कि हे प्रभु मुझे गुलाब का फूल बना दो। प्रभु ने कहा कि झंझट में मत पड़ो, बहुत खतरा है गुलाब का फूल बनने में। बाकी साथी थे, उन्होंने भी कहा क्यों तुम गुलाब का फूल बनना चाहते हो, गुलाब का फूल बन भी गए तो आंधी आएगी, तूफान आएगा, पंखुड़ियां गिर जाएगी और उखाड़े जाओगे, तो क्या करोगे? छोड़ो इस पागलपन को, हमारे कई पूर्वजों ने ऐसा ही पागलपन किया था, हमें पता है, जातिगत अनुभव है। दूसरे फूल भी उस फूल को बहुत समझाने लगे, परंतु अपनी इच्छा में अड़िग उसने कहा नहीं, चाहे एक दिन के लिए ही बन जाओ, पर मुझे गुलाब का ही फूल बनना है, मुझे देखना है सूरज को, मुझे देखना है आंधी को, तूफान को, मुझे स्पर्श करना है उन हवाओं को, कब तक यहाँ सुरक्षित रहूंगा? ये भी कोई जीवन है मुर्दे जैसा? ईंट के आड़ में ना सूरज की रोशनी है, ना आंधी है, ना तूफान है, ना बारिश है, कुछ भी नहीं है, ऐसा जीवन भी किस काम का जीवन? मुझे तो गुलाब का फूल बनना है। फिर भी साथी उन्हें समझाया, मत बनो गुलाब का फूल, कोई आएगा तोड़ के ले जाएगा। नहीं माना, गिर जाओगे, मिट जाओगे, अस्तित्व समाप्त हो जाओगे, कलंक लगाओगे हमारी जाति पर, परंतु नहीं माना, प्रार्थना करते रहा और भगवान ने उसे गुलाब का फूल बना दिया। गुलाब का फूल बना और सुबह से परीक्षाएं चालू हो गई, आंधी आई, पंखुड़ियां गिरी, तूफान आए, लड़खड़ाया, बहुत जोर से बारिश हुई, पूरा ही गिर गया, धूप आई दोपहर को, इतनी धूप आई कि पूरा सूख गया, और शाम होते होते तो ऐसी हालत हुई कि उखड़ के बाहर गिर गया। दोस्त और मित्र लोग आ गए सांत्वना देने, पहले ही कहा था ये पागलपन ही है तुम्हारा, नहीं माने ना, अब भुगतो। फिर भी क्या कहने लगा वो, तुमसे तो मैं बहुत अच्छा ही हूं, केवल एक दिन के लिए तो गुलाब बन पाया, सब कुछ देख लिया इस जीवन में, वो आंधी को भी देख लिया, उस सूरज को भी देख लिया, भल अस्तित्व मिट गया, परंतु गुलाब बनकर मर रहा हूं, केवल तुम जैसा फूल नहीं रहा। तो गुलाब बनने की तो चुनौती है, बहुत कुछ हो सकता है गुलाब के साथ। और बाबा क्या कह रहे हैं, खिला हुआ गुलाब, फुल्ली ब्लॉसम्ड, सदा और फुल, दो शब्द जोड़े हैं वहां पर, सदा ही खिला हुआ गुलाब और फुल गुलाब, ऐसा बाबा देखना चाहते हैं। ये दूसरी बात है जो बाबा ने कही। कई बार आज मुरली में बाबा को लगा आज मनाने का दिन है, नहीं बताऊं, रोका अपने आप को, फिर लगा मनाने का दिन है, ये बात नहीं बतानी चाहिए, फिर रोका, पर आखिरी में तो बोल ही दिया, कब तक दमन करेंगे, दमन की फिलॉसफी। बाप बच्चों की कमजोरी को देख नहीं सकते हैं, इतना प्यार है, जैसे बाप संपूर्ण है, बी परफेक्ट इवन एज योर फादर दैट आर्ट इन हेवन इज परफेक्ट, जैसे तुम्हारा बाप परफेक्ट है, जैसे तुम्हारा बाप संपूर्ण है, जैसे बाप दादा संपूर्ण है, वैसे बाप दादा सभी बच्चों को देखना चाहते हैं। इसके लिए कह ही दिया आखिर में थोड़ा बहुत कुछ, कई बार रोका स्वयं को, पर नहीं रोक पाए। तो एक तो दो समान, सदा समान की स्मृति रहती है, प्रश्न पूछा है वहीं पर, समान की स्मृति सदा सदा, कौन सा समान? अमर भाग्यवान, अमर वरदानी, कौन सा तिलक? स्मृति का अविनाशी तिलक, कौन सा वरदान? संपूर्ण पवित्र भव, और खिला हुआ गुलाब, और खुशी कैसी जिसका कोई वर्णन नहीं, जिसका कोई इस संसार में बैरोमीटर मापदंड नहीं तोलने का, नापने का। ऐसी हमारे पास खुशी है, ऐसी हमारी खुशी है। स्वयं से प्रश्न पूछना है, ऐसी खुशी रहती है। स्वयं को स्वयं चेक करना है। आगे बाबा ने कहा है, परिवर्तन की बात की है और चेकिंग की बात की है। स्वयं स्वयं को चेक करो, दूसरों को नहीं देखो, स्वयं को देखो। इस बात को देखो कि स्वमान में सदा रहते हैं। स्वमान में रहेंगे तो नीचे नहीं आएंगे। लास्ट संडे मुरली चली थी, नीचे क्यों आ जाते हो? नीचे आने की आवश्यकता क्या है? कौन हो? मधुबन निवासी हो। मधुबन निवासियों की इतनी सारी बातें गिनाई थी, बढ़िया बढ़िया माल, अनुभव की पिकनिक, सारी दुनिया यहां आती है। वर्णन कौन करता है? बाप वर्णन करता है। सब कुछ बना बनाया मिलता है, कहीं जाने की जरूरत नहीं। संकल्प की क्या चिंता की क्या, संकल्प की भी आवश्यकता नहीं है। ऐसे महान भूमि में, तीर्थ भूमि में, चरित्र भूमि में, यज्ञ भूमि में रहने वाले जो संसार की महानतम आत्माएं हैं, लाइट हाउस है जो, ऐसी आत्माएं, इन सब बातों में से एक बात भी अगर याद रहे तो नीचे नहीं आएंगे, कभी नीचे नहीं आएंगे। स्वयं को समान देना। तो बाबा यहां कौन सा समान, कौन सा तिलक लगा रहे हैं? स्मृति का, और शिवरात्रि का दूसरा एक जागरण। सदा जागृत अवस्था हो, होश की अवस्था हो, मूर्छा की अवस्था ना हो, अमूर्छा की अवस्था हो। गिरते हम तब हैं जब थोड़ा सा, थोड़ी सी नींद आती है, थोड़ी झपकी लगती है, तब गिरते। जो संपूर्ण होश में है वो कभी गड्ढे में नहीं गिरेगा। गिरते तब है, गलतियां होती तब कब, तब है जब मूर्छा आ जाती है, विस्मृति हो जाती है। तो सदा स्वयं को जगा के रखना, जागृत रखना। तंत्र शास्त्र है भारत में, तंत्र के प्राचीन ग्रंथों में लिखा हुआ है, तीसरी आंख का वर्णन है। वहां पर उन्होंने वैज्ञानिक रीति से प्रयोग किए हैं तीसरी आंख के। तीसरी आंख के ऑपरेशन भी है उनके पास, कैसे किए जाए तीसरी आंख के, जो कि यहाँ आज्ञा चक्र के बीच में कहा जाता है। ये स्थान संपूर्ण शरीर में सबसे अधिक संवेदनशील स्थान है, तिलक यहाँ लगाते हैं, सबसे संवेदनशील स्थान। शरीर की सारी चेतना को यदि इस तीसरी आंख पर केंद्रित कर दिया जाए तो शक्ति का आविर्भाव होता है, शक्तियां प्रकट होने लगती है, वह दिखने लगता है जो होने वाली घटनाएं हैं, बहुत कुछ आश्चर्यचकित घटनाएं पता चलती है। कहा जाता है ये तीसरी आंख जन्म जन्म से भूखी है और प्यासी है। किसके लिए? होश के लिए, जागरण के लिए। यहां पर अगर एकाग्र कर दिया जाए चित्त को केवल तीसरी आंख पर, आज्ञा चक्र पर, तो अद्भुत शक्तियां प्रकट होती है, साक्षी का भाव आ जाता है, सब कुछ संसार साक्षी होने लगता है। यहां पर तो क्रोध आता है तो हम स्वतः क्रोध बन जाते हैं, लोभ आता है तो लोभ हम बन जाते हैं, काम उठता है तो काम हम बन जाते हैं, विचारों की तरंगे और हम एक हो जाते हैं, साक्षी भाव नहीं रह पाता। साक्षी अर्थात विचार आ रहे हैं और जा रहे, बादलों की तरह हम विचारों को देख सके, और वो संकल्प भी कम होते हैं, इकोनॉमी का अवतार जिसे आज बाबा ने कहा है। ऐसी अवस्था योगियों की बताई है, तिब्बत में जो लामा है, वहां के जो ज़ेन फकीर है जापान के, सभी ने इस पर प्रयोग किया है, बहुत सारे प्रयोग इस पर किए गए। चेतना को मध्य में, भूमध्य में केंद्रित कर देना, यह भी अभ्यास है। तो बाबा कह रहे स्मृति का तिलक, यह तिलक अविनाशी है। ब्राह्मण है तो तिलक भी अविनाशी ही होना चाहिए। नया जन्म है, अलौकिक जन्म है, जन्मते ही तिलक मिला है, और लगाने वाला भी कौन? तिलक देत रघुवीर। उधर चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे, गायन है, तिलक कौन दे रहा है? कितना नशा है उस तुलसीदास को भी कि स्वयं रघुवीर तिलक दे रहा है, जिसकी जन्म जन्म आराधना की, तिलक देत रघुवीर। यहां स्वयं भगवान आकर अपने बच्चों को तिलक लगा रहा है, अविनाशी तिलक जो कभी ना मिटे, कभी समाप्त ना हो, ऐसा तिलक सदा लगा हुआ रहे। खुजली तो नहीं आती है? सुबह कह रहे थे ना दीदी जी, तिलक लगता है तो खुजली आती है, मिट जाता है। तो ये दिन कौन सा है, ये मिलन कौन सा है? न्यारा और प्यारा जन्म दिवस है, नाचने और गाने का दिवस है। कौन सा दिवस है? नाचने और गाने का, लड़ने झगड़ने का नहीं। योग भी संगीत है, नृत्य है, स्वतः है, सहज है। ये सीजन कौन सी चल रही है? विजय की। आज बोला बाबा ने नाचने और गाने की सीजन है। सीजन जैसी है वैसा ही हमारा आचरण हो, परंतु पाव से नाचने की बात नहीं है, केवल मुख से गाने की बात नहीं है। घमसान ना कर दो। मौज में रहने की जीवन है, सदा मौज में रहने की जीवन है, परंतु उसके लिए साधना है। बिना साधना के ये मौज नहीं आएगी जीवन में। देहभान जन्म जन्म का है, विकार आत्मा में जन्म जन्म के है। सारे विकार समाप्त हो जाए, वासनाएं तृष्णाएं और इच्छाएं तिरोहित हो जाए और एक रस स्थिति हो जाए, आत्मा में ही संपूर्ण आनंद प्राप्त हो। सारे विश्व में एक ही रोग है और उसकी एक ही दवाई है, ओनली वन डिसीज, देहभान, और एक ही दवाई मन मनाभाव, आत्माभिमानी स्थिति, एक ही दवाई है। बाबा विदेशियों से पूछ रहे मौज में हो। बाबा ने यहां पर कच्चा फल और पक्के फल की भी बात कही है। शिवरात्रि पर आए हैं फिर बाबा, दो चीजें शिवरात्रि पर, कौन सी दो बातें? एक व्रत और दूसरा जागरण। जागरण की कोई चर्चा नहीं की, व्रत के बारे में ही, व्रत का ही बाबा ने विस्तार किया। उधर भक्त लोग भी व्रत करते, अपने व्रत को कभी तोड़ते नहीं है। कौन सा व्रत करते हैं? भूखा रहते हैं, प्यासा रहते हैं, खाते नहीं है कुछ भी। वैसे तो व्यक्ति दो बार खा लेता है, परंतु जो खाता नहीं है वो न मालूम मन से कितनी बार खाता है। अद्भुत सा नियम है व्यक्ति का, जो नहीं खाता है, दमन करता है अपने आप को, वो मन से दिन भर खाते ही रहता है। वैसे तो दो तीन बार खाके संतुष्ट रहता है, काम अपना कर लेता है, परंतु जो दिन भर नहीं खाता वो रात में भी खाता है स्वप्न में। फिर स्वप्न में भोजन ही दिखता है। जो सारे दिन भर कहता है ये गरीबी बिल्कुल, अमीरी बिल्कुल नहीं चाहिए, अमीरी से बहुत धोखा है, नुकसान है, गरीब रहना ही अच्छा है, वो रात में पता नहीं किन किन महलों में घुस जाता है। दिन भर जिस स्त्री और जिस पुरुष से स्वयं को दूर रखते हैं, रात में वही दिखते हैं। तो बाबा कौन सा सिद्धांत? रूपांतरण का सिद्धांत सिखा रहे हैं। जो व्रत सिखा रहे हैं वो केवल ब्रह्मचर्य व्रत नहीं है। संसार में केवल ब्रह्मचर्य व्रत को वो भी जबरदस्ती कुछ कुछ धारण करते हैं, उसकी भी महानता है, परंतु यहां ब्रह्मचर्य नहीं है केवल, यहां की पवित्रता केवल ब्रह्मचर्य नहीं है, ब्रह्माचर्य, आचरण ब्रह्मा के समान। संकल्प में भी, बोल में और कर्म में भी, एक एक बोल भी महावाक्य हो। संकल्प में प्यूरिटी का महत्व, बोल में प्यूरिटी के वाइब्रेशंस हो, हर बोल प्यूरिटी के स्पंदनों से स्पंदित हो। ऐसे बोल, ऐसे श्रेष्ठतम बोल, केवल भाषण नहीं, परंतु बोल में ही वाइब्रेशन है, बोल में ही प्रकंपन है। ऐसे बोल है जो सीधा दिलों में प्रवेश कर जाते हैं, क्योंकि प्यूरिटी की पावर है वहां पर। तो बाबा ब्रह्मचर्य का परिभाषा बता रहे, ब्रह्माचारी, संपूर्ण पवित्रता, जन्मते ही वरदान मिला है, संपूर्ण पवित्र भाव, यह व्रत लिया हुआ है। संसार में जो व्रत लेते हैं वो दैहिक है, देह को भूखा रखते हैं, देह को प्यासा रखते हैं, देह को पीड़ित करते हैं। अमेरिका में एक सन्यासियों का, किसी काल में एक सन्यासियों का संगठन था जिन्हें फ्लैगिस्ट कहा जाता था। वो सन्यासी ऐसे थे, जब भी काम वासना उत्पन्न होती थी अपने आप को चाबुक रखते थे और तब तक मारते थे जब तक खून ना निकल जाए, देह को पीड़ा देते थे। देह ने इच्छा उत्पन्न की, अब देह को मारो। इंद्रियों ने गलती की, अब इंद्रियों की, कईयों ने इंद्रियों को काट दिया अपने, दमन किया, परंतु उस ब्रह्मचर्य की अवस्था को नहीं प्राप्त किया। कईयों ने घर छोड़ दिया परंतु ब्रह्मचर्य को नहीं प्राप्त कर पाए। कईयों ने, सूरदासों ने अपनी आंख फोड़ दी। उन इंद्रियों का क्या दोष, बिचारी निर्दोष है। दोष तो उस मन का है जिसमें वासनाएं उत्पन्न हो रही है, ऐसी निष्पाप है बिचारी इंद्रिया। उनका तो राजा कोई और है, उसमें उत्पन्न हो रहा है, परंतु ये किया। विदेश का, पाश्चात्य जगत का जो मनोवैज्ञानिक है सिगमंड फ्राइड, अगर उसने बाबा के, शायद तब तो मुरली का कोई एक वाक्य भी पढ़ लिया होता तो सारे संसार भर ने उसने जो क्रांति कर दी फ्राइड ने, वो आज नहीं हुई होती। सारा सब कुछ जो भारत में तो काम विकार तब से आ गया द्वापर युग से, विदेश में कहां था। विदेश में तो अभी अभी जब से फ्राइड के सिद्धांत हुए निकले, तब से उसने अपने जो सारे सिद्धांत रखे, इद सुबरिगो, वो सारे जो भी सिद्धांत है सिगमंड फ्राइड के, उसके बाद में ही, क्योंकि उसने, वो धर्म विरोधी हो गया, क्योंकि उसने देखा कि ये सारे सन्यासी, ये सारे ईसाई लोग इसी तरह का दमन कर रहे हैं और इन्हीं में ही ये वासनाएं और ज्यादा प्रदीप्त है, तो उन्होंने सबका विरोध कर दिया, वो धर्म विरोधी हो गया। और उसने अपने सारे सिद्धांतों में यही लिखा और यही वैज्ञानिक है कहा। उसको पढ़ने के बाद ही विश्व भर में काम विकार को मान्यता प्राप्त हुई, फ्राइड की थियोरी के बाद। तो परंतु अगर एक महावाक्य यहां का उसे मिल जाता कहीं से, उसके कानों में पड़ जाता है रूपांतर की थियोरी, कि यहां बाबा दमन नहीं सिखा रहे, रूपांतरण, उदात्तीकरण, सब्लिमेशन, नॉट सपरेशन। विकार रूपांतरित हो रहे दिव्य गुणों में, ऐसा उसने अगर सीख लिया होता, समझ लिया होता, जान लिया होती, उसे कहीं से खबर मिल गई होती, तो जो दमनवाद है वह नहीं आता संसार में, जिसने संसार को और ही विक्षिप्त, न्यूरोटिक बना दिया है। यह देह अमूल्य है, क्योंकि इसी देह में रहकर हमें साधनाएं करनी है, परंतु देह का दमन कर नहीं, मन की वृत्ति को परिवर्तन कर। पाश्चात्य जगत में एक संत हुआ है, सेंट फ्रांसिस ऑफ असिसी। सेंट फ्रांसिस बहुत ही दिव्य उसका जीवन है, बहुत ही क्रांतिकारी उसका जीवन है, जिसने जीवन में दो नियम बनाए थे, एक गरीबी और दूसरा संपूर्ण पवित्रता, ब्रह्मचर्य। अपने जीवन के अंत में जब वो मृत्यु शैया पर था और अभी देह को छोड़ने ही वाला था, सारा जीवन उसने परमात्मा संदेश सारे विश्व में फैलाया, क्राइस्ट का संदेश, परंतु जब मृत्यु शैया पर था तो अपनी देह को धन्यवाद देने लगा, अपनी देह से बातें करने लगा कि हे मेरी देह, तुझे बहुत बहुत धन्यवाद, तेरे ही कारण मैंने इतनी साधना कर पाई, वृथा ही मैंने तुझे सारे जीवन भर परेशानी दी, पीड़ित किया, उपवास रखे, बहुत पीड़ित किया तुझे, परंतु तूने मेरी हमेशा सहायता की। अब जीवन के अंतिम क्षणों में मुझे पता चल रहा है कि तू मेरा शत्रु नहीं था ये देह, परंतु मेरा मित्र था, मैंने ही तुझे शत्रु समझा हमेशा, क्या कुछ नहीं किया। वो उसे मृत्यु के समय पता चला देह का, हमें अब पता चल रहा है, इसी देह में रहते, इसी भ्रुकुटी तख्त पर विराजमान रहते, ये देह बहुत अमूल्य है, इसी देह में हमें संपूर्ण बनना है, इसी देह में, इसी जन्म में, इसके लिए इस देह की भी संभाल करनी है। केवल दमन से नहीं होगा, रूपांतरण करना होगा इसका, वासनाओं का कार्य देह के तल पर नहीं, आत्मा के तल पर, मन के तल पर करना है। तो बाबा यहां व्रत लेने की बात कर रहे, कौन सा व्रत, ब्रह्मचर्य, ब्रह्माचर्य का। ऐसे ब्रह्माचारी स्थिति में स्थित रहने वाले हिम्मतवान बच्चों को, याद प्यार में बाबा ने कहा है, ऐसे हिम्मत की आवश्यकता है, या बहुत बड़ा साहस है ये, पवित्रता का व्रत लेना बहुत बड़ा साहस, दुस्साहस तो नहीं, साहस, कई लोग दुस्साहस भी कहते हैं। तो संपूर्ण पवित्रता अर्थात केवल ब्रह्मचर्य नहीं, और ब्रह्मचर्य अर्थात केवल पवित्रता भी नहीं, ब्रह्मचर्य अर्थात केवल पवित्रता भी नहीं, पवित्रता अर्थात ब्रह्माचर्य, ब्रह्मा का जो आचरण है वैसा आचरण करना अर्थात पवित्रता। तो हमारी दृष्टि में, हमारी वृत्ति में, हमारे बोल में, हमारे संपर्क में, संबंध में, हर कर्म में, कर्म में कर्म और योग, कर्मयोगी, कर्म और योग दोनों हो, कर्म में भी, बोल में भी, संकल्प में भी, सब कुछ संपूर्ण पवित्रता की जैसे छाप हो, ऐसे जो पवित्र आत्माएं हैं वो परमात्मा को अति प्रिय है। यह एक बाबा ने कहा मूल फाउंडेशन इस व्रत के लिए कहा, दृढ़ संकल्प आगे कहा है। यह संकल्प शक्ति क्या है? फाउंडेशन है। इस ये जो शक्ति है सबसे बड़ा खजाना है, सभी खजानों से सबसे बड़े खजाना ये खजाना है। सबसे ऊपर बाप इस खजाने को रखते, इसके लिए इस खजाने को वेस्ट ना जाने दो, निगेटिव में ना हो चली जाए ये शक्ति, क्योंकि ये शक्ति एकाग्र हो, ब्रह्मचर्य बन जाए। ब्रह्मचर्य के लिए इस शक्ति की आवश्यकता है। संकल्प व्यर्थ ना जाए, संकल्प वेस्ट ना जाए, विकारों की तो बात ही नहीं कर रहे बाबा। सबसे ज्यादा शक्ति किसमें नष्ट होती है? विकारों से। विकारों में भी सबसे ज्यादा संकल्प तेज काम विकार के, क्रोध के बाद में लोभ, मोह, अहंकार, विकार, विकारों के बाद फिर आता है निगेटिव, जिससे संकल्प तेज चलते हैं, बहुत सारे संकल्प, संकल्पों का बाहुल्य। उसके बाद में साधारण, व्यर्थ, उसके बाद में व्यर्थ, निगेटिव के बाद और फिर साधारण। बाबा बात कर रहे इकोनॉमी करने की, कर्म और बोल तो बात की बात है, कार्य किस तल पर करना है? संकल्पों के तल पर करना है। बाबा ने कहा स्वयं को चेक करो, सारे दिन भर चेक करो, दूसरों को नहीं देखो, स्वयं को देखो, कितनी परसेंटेज में पवित्रता रही, कहां कहां पवित्रता का खंडन हुआ, स्वप्न में हुआ, संकल्पों में हुआ, भावनाओं में हुआ, कल्पना में हुआ, जो कल्पनाएं कर रहे कहीं उसमें तो काम का अंश नहीं, वंश नहीं, कहीं काम की छाया वहां तो नहीं पड़ रही है, देह तो नहीं खींच रहा है, देह की तरफ बार बार दृष्टि तो नहीं जा रही है। दृष्टि हमारी कैसी है उस पर काम करना है, इस दृष्टि को परिवर्तन करना है, यही इस ज्ञान की महानता है। जब तक हमारी दृष्टि देह को देखना ही बंद कर दे, दिखाया है कुछ युवक एक स्त्री को पकड़कर जंगल में ले जाते हैं, स्त्री कैसे तो कैसे भी करके वहां से छूट निकलती है, और वहां पर दिखाया है महात्मा बुद्ध ध्यान लगाए हुए है, और उनके सामने से वो स्त्री जाती है, वो तीन चार व्यक्ति भाग भाग कर बुद्ध के पास आते हैं और कहते हैं कि क्या किसी स्त्री को यहां से भागते देखा? वो कहता है यहां से कोई गया तो है, परंतु वो स्त्री है या पुरुष है वो मुझे पता नहीं। दृष्टि नासिकाग्र है, दृष्टि रूपांतरण हो गई है, दृष्टि देह को देखना ही बंद कर दिया है, वो देह केवल अब मिट्टी का पुतला मात्र है, मृण्मन है, मृण्मय है, वो चैतन्य हो गई है, दृष्टि चैतन्य को देख रही है, मृण्मय को नहीं, मिट्टी को नहीं। तो हमारी दृष्टि में वह रूपांतरण आ जाए, इस दृष्टि पर कार्य करना है, इस दृष्टि पर काम करना है, कहां कहां कैसे कैसे क्या देखने से। पिछले संडे की मुरली थी ना, चेक करो फिर स्वीकार करो। वो राजा, वो रजवाड़े, वो भी क्या करते हैं, कोई भी चीज को स्वीकार करने से पहले चेक करते फिर स्वीकार करते। वो गिरे हुए राजा, द्वापर युग के राजा, उनकी इतनी खातरी होती है, तुम तो बहुत अच्छे राजा हो, बड़े राजा हो, तो हर चीज को स्वीकार करने से पहले पहले चेकिंग। ये साधन बताया था पिछले संडे मुरली ने, जो मधुबन निवासी है, नीचे न आने का साधन, हमेशा कैसे ही श्रेष्ठ स्थिति में रहे, उसका ये साधन था, उसका ये मार्ग था कि नीचे आना नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए नीचे नहीं आना है। स्थिति का गिर जाना ये दंड कहा है बाबा ने, हमारी स्थिति निरंतर ऊंची ही रहे चाहे कुछ भी होता रहे संसार में। जागरण की बात बाबा ने नहीं कही मुरली में, परंतु जागने का अर्थ है समान में रहना, होश में रहना, निरंतर विस्मृति की निद्रा से परे ऊपर निरंतर स्मृति में रहना। उसके लिए स्वयं को ऐसे ऐसे जगा के रखना पड़ेगा, नींद आई कि फिर जगाओ, नींद आई फिर जगाओ, सोने नहीं देना है खुद को, बिल्कुल नहीं सोने देना है, निरंतर जागरण की अवस्था, क्योंकि सोए तो गिरे, अब एक बार गिरने के बाद इस मार्ग में उठ तो सकते हैं, परंतु टाइम जाता है, टाइम वेस्ट होता है। कितना टाइम, किसी को उठने में एक दिन लगेगा, किसी को दो दिन, किसी को एक हफ्ता। मधुबन में जल्दी उठ सकते हैं, संसार में तो रिकवरी पीरियड बहुत ज्यादा है, 6 मास तक भी नहीं उठ सकते। मधुबन का एक फायदा है, यहाँ डिस्टर्बेंस आया भी, हलचल हुई भी, तो भी खुद को संभालने के लिए बहुत सारी चीजें है। यहाँ का वायुमंडल इतना श्रेष्ठ है, संसार में इतना नहीं है। वहां रिकवरी पीरियड 6 मास भी हो सकता है, 1 साल भी हो सकता है, तो सालों साल भी हो सकता है। एक बात जो हुई अब तक भूले नहीं है, वही याद है, अभी तक वही स्मृति में है, इसने ये किया, उससे अभी तक निकले नहीं है बाहर। तो जागना, स्वयं को जागृत रखना, होश में रखना, अमूर्छा की निरंतर अवस्था में रहना, निरंतर स्मृति स्वरूप स्थिति में रहना, ये लक्ष्य है इस जीवन का। स्वयं को सोने नहीं देना, जगा के रखना। फिर बाबा संकल्प की जो बात कही, दृढ़ संकल्प की बात कही, इकोनॉमी का अवतार, संकल्प वेस्ट ना हो, ये सबसे बड़ा खजाना है। बाबा ने 9 खजाने हमेशा गिनाए हैं। कौन से 9 खजाने? वैसे खजाने तो अनगिनत है, परंतु नवनिधि, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असबरदीन जानकी माता। जानकी ने हनुमान को असबरदीन ये नवनिधिया अष्ट सिद्धियां दिए। 8-9 खजाने बाबा गिनाते हैं। पहला ज्ञान, गुण, शक्तियां, संकल्प, समय, फिर उसके बाद में खुशी, पवित्रता, पुण्य कर्म और दुआएं। ऐसे 9 खजाने, नव निधियों का गायन भक्ति में है। इन सभी खजानों में से सर्वश्रेष्ठ खजाना है संकल्प का खजाना, संकल्प शक्ति। जगदीश भाई का एक बहुत ही पावरफुल लेख जो संकल्प की किताब है स्पार्क की, उसमें लिखा है संकल्प शक्ति क्या है, इसको कैसे शक्तिशाली बनाया जाए, दृढ़ बनाया जाए, कैसे संकल्प। मास्टर सर्वशक्तिवान की कभी बाबा ने परिभाषा दी है, मास्टर सर्वशक्तिवान अर्थात जो संकल्प से ही सारे कार्य करते। पिछले संडे की मुरली दीदी दादी से मुलाकात, संकल्प से ही डायरेक्शन दे सकोगे, किस किस को कैसे हैंडल करोगे, इतने सारे सेंटर संकल्प से, उनको भी पता चलेगा, अनुभव भी होगा, ऐसी संकल्प शक्ति से कार्य करना है। संकल्प की सिद्धि प्राप्त हो जाएगी आत्माओं को, उनको जिनमें प्यूरिटी का बल है, केवल ब्रह्मचर्य नहीं, केवल प्यूरिटी बल बन जाए, तब वो संकल्पों की सिद्धि होगी। ये बात। फिर बाबा यहाँ 99 की मुरली है, 99 की, उस समय की जो भी 96 से लेकर बहुत सारी मुरलियां, सब में विनाश की बातें हैं। तो बाबा ने क्या कहा, विनाश होने दो, तुम्हें क्या करना है, मजे से रहना है, मौज में रहना है, तुम्हें किस बात की चिंता, निर्भय। क्या कहा, निर्भय, क्या होगा, कैसे होगा, हाय ये सब तुम्हारे बोल नहीं है, तुम निर्भय आत्माएं हो, अचल अडोल रहने वाली आत्माएं हो। तुमने ही तो आह्वान किया था, तुमने ही तो कहा था, सारा दोष हम पर ही डाल दिया है बाबा ने, तुमने ही तो कहा था कि गोल्डन एज लाओ, और अभी प्रकृति क्या करेगी, झाड़ू भी किसने दिया, और कितना बड़ा झाड़ू दिया, लंबा लंबा झाड़ू दिया, तुमने ही झाड़ू दिया है प्रकृति को, तो प्रकृति भी झाड़ू लगाएगी। जब आकाश झाड़ू लगाए तो क्या होगा, अतिवृष्टि होगी, जब धरती झाड़ू लगाने चालू कर देगी तो भूकंप आएगा, भूचाल आएगा, सब कुछ दब जाएगा, जब अग्नि झाड़ू लगाएगी तो ज्वालामुखी फ्रोजन वोल्केनो एक्टिव हो जाएंगे, आग ही आग होगी, जब हवाएं झाड़ू लगाएंगे तब पांच तत्व, देखो पांच तत्व, पांच सेवाधारी झाड़ू लगा रहे हैं बड़े बड़े, सीन को अपने आंखों के सामने लगाओ तो तुम हलचल में क्यों आते, तुमने ही तो ऑर्डर दिया था, तुमने ही तो कहा था झाड़ू लगाओ, और तुम्हारे लिए तो लगा रहे, सफाई तुम्हारे लिए हो रही है, तुमको इन स्वर्ग चाहिए ना। हवाएं झाड़ू लगाएंगी तो क्या होगा, आंधी तूफान, और समुन्दर जब झाड़ू लगाएगा तो सोचो, समुन्दर को एक सेवाधारी के रूप में देखो झाड़ू लगाते हुए, कैसे भयंकर सफाई होगी, जबरदस्त सफाई होगी, कितना विकराल आवाज होगा, महाप्रलयंकारी विनाश कहा जाता है। समुन्दर जब झाड़ू लगाना चालू कर देंगे तो शैलेंद्र भाई क्या होगा, क्या आएगा रतन निकलेंगे। अच्छा, सारा का सारा शहर, सारा के सारे गांव, ये संसार, ये पृथ्वी डूब जाएगी, ऐसा दृश्य होगा। उस स्थिति में अचल अडोल रहना, उसके लिए बाबा ने और दो बातें कही हैं यहाँ। बुद्धि को किन बातों से खाली रखना और किन बातों से भरा हुआ रखना। बुद्धि किस में बिजी हो? लाइट देने में, क्योंकि मन और बुद्धि लाइट हाउस है। तो मन विश्व कल्याण में बिजी रहे, बुद्धि विश्व कल्याण में बिजी रहे और लाइट फैलाने में बिजी रहे उस समय, तो भय नहीं होगा, गड़बड़ नहीं होगी, घबराहट नहीं होगी, हलचल नहीं होगी। घबराहट, हलचल और गड़बड़, तीन शब्द बाबा ने कहे। खेल का उदाहरण दिया, बहुत सुंदर। खेल में क्या होता है? प्यार भी होता है तो खून भी होता है, तो लड़ाई भी होती है, तो अच्छी बातें भी होती है। तो अभी अचल लड़ोल स्थिति में स्थित हो जाओ, बुद्धि विश्व कल्याण में बिजी हो जाए, लाइट हाउस के समान में स्थित होकर तांडव नृत्य हो रहा है, पांच सेवाधारी सफाई कर रहे देखो और हम सकाश दे रहे। फिर ट्रैफिक कंट्रोल के बाद मुरली का जो बचा हुआ शेष भाग है, 5-10 मिनट हम उस पर चर्चा करेंगे। बुद्धि को बिजी रखना है लाइट फैलाने में, बुद्धि को बिजी रखना है विश्व कल्याण में, तो भी निर्भय रहेंगे। और बुद्धि को किससे खाली रखना है, क्या क्यों से, प्रश्नों से, क्या होगा, कैसे होगा, ये हो गया, क्या हो गया, इन सभी प्रश्नों से बुद्धि को खाली रखना है। और बाबा ने कहा पत्र, टेलीफोन, टेलीविजन, ये सब क्या होगा, काम नहीं आएगा, साइंस के साधन होते हुए भी काम नहीं आएंगे। तो क्या करो, अपने आप को उनके ऊपर निर्भर ना करो, हमारी साधना उनके आधार पर ना हो। तो ये साधनों की बात यहां बाबा ने कही। और अंत में साइलेंस की शक्ति का भी बाबा ने यहां पर वर्णन किया है, साइलेंस की शक्ति से ये करो। और उसके बाद जो मुरली का सार बाबा ने यहां फिर से कहा, दो बातें, बुद्धि की लाइन क्लियर हो और इकोनॉमी का अवतार हो। हमको चेक करना है कि हमारे संकल्प वेस्ट ना जा रहे हैं, व्यर्थ की तरफ ना जा रहे हैं, ये दो बातों की चेकिंग करा। बाबा कहना नहीं चाहते थे परंतु कह दिया, क्योंकि प्यार बहुत है, कमजोरी देख नहीं सकते, अपने समान संपूर्ण बनाना चाहते हैं। और फिर यहां फिर से और एक बात, वही हलचल वाली बात की ही, कि हर व्यक्ति सब तरफ से हलचल होगी, एक भी तरफ ऐसा नहीं होगा कि जिसमें हलचल नहीं होगी। इसमें सेफ्टी का केवल एक ही साधन है, और जिसकी इस ज्ञान मार्ग में सबसे ज्यादा साधना हमको करनी है। कौन सी साधना है वो, देह से स्वयं को अलग कर देना, डिटैच कर देना, पृथक कर देना, आत्म अभिमानी स्थिति, अशरीरी अवस्था, मैं देह नहीं, बस यही एकमात्र सबसे बड़ा अभ्यास है। देह से स्वयं को ऊपर रखना, देह को मिट्टी समझना, देह जैसे है ही नहीं, अमृत वेला, इसी का ज्यादा से ज्यादा अभ्यास करना। कल हम भगवान के सामने होंगे तो जितनी हमारी देह अभिमानी स्थिति होगी, जितनी अव्यक्त स्थिति होगी, केवल बाबा के सामने नहीं परंतु दिन भर और हमेशा, परंतु कल के दिन विशेष अव्यक्त स्थिति रखनी है। निरंतर संकल्प करना है कि भगवान केवल और केवल मेरे लिए आ रहा है, आज के दिन केवल मेरे लिए आ रहा है, उससे वरदान लेना, मुरली सुनते हुए भी अपनी स्थिति को श्रेष्ठ रखना, मुरली सुनते हुए भी योग करना, जैसे बाबा वहां बैठकर सबको साक्षी होकर देखता है, ये भी अभ्यास हम कर सकते हैं कि हम भी बैठकर जो साक्षी होकर सबको देख रहा है उसको भी साक्षी होकर देखना, कैसे वो मिल रहा है अपने बच्चों से, कैसे अपने अनन्य रत्नों से मिल रहा है, कैसे उन रत्नों से मिल रहा है जिन्होंने अपनी जीवन समर्पित कर दी उसके चरणों में, यज्ञ की वेदी में सब कुछ स्वाहा कर दिया, ऐसी आत्माओं से, ऐसी वो दादियों से वो मिल रहा है, कैसे वो मिल रहा है, सभा में कितनी बड़ी सभा होगी, विदेशी होगे, सेवाधारी होगे, सबसे मिल रहा है वो, उन कुमारियों से मिल रहा है, उन कुमारों से मिल रहा है जिन्होंने यज्ञ की वेदी पर अपना यौवन समर्पित कर दिया। वो कोई साधारण आत्माएं नहीं है, जो मिल रहा है और जिनसे वो मिल रहा है वो दोनों ही संसार की महानतम आत्माएं। ऐसा वो मिलन, महान मिलन, दिव्य मिलन, अद्भुत मिलन, न्यारा प्यारा मिलन, अचानक की लॉटरी, महान मिलन, वंडरफुल मिलन, दिल में छप जाने वाला मिलन, ऐसा मिलन कल होगा तो हम उस संसार की सर्वोत्तम शक्ति है उसके सामने डायरेक्ट होंगे। तो उससे वो सारी शक्तियां ले लेना, सारे वरदान ले लेना, सारी पावर्स ले लेना, सारे गुण ले लेना। मधुबन निवासियों के लिए बाबा ने पिछले संडे क्या कहा, बहुत अच्छी बात कही थी, पवित्रता का ताज, अगर 36 प्रकार का भोजन यहाँ खा रहे हो तो 36 गुण होने चाहिए मुकुट में, पवित्रता के ताज में 36 हीरे लगे हुए होने चाहिए, नॉट कमोबेश नहीं, कम से कम मिनिमम 36 जाति दो, तो फिर तो फूलों की पुष्पा हो जाएगी, ऊपर से हीरो की वर्षा हो जाएगी, वो भी असली। तो बाबा ने और एक बात इस मुरली में परिवर्तन की कही है, वो हमने नहीं कही, परिवर्तन बाबा ने कहा, परिवर्तन जो है वो भाषण तो बहुत किए, अभी स्वयं का परिवर्तन कितनी परसेंटेज में किया है, दूसरों को नहीं देखना है, स्वयं को देखना है। तो सारी मुरली में सबसे पहली बात नशा, कौन मिल रहा है, ये बर्थडे, उसकी खुशी, ये खुशी कितनी अथाह है, समान पवित्रता की प्रतिज्ञा, व्रत संपूर्ण पवित्र, इस प्रतिज्ञा, ये जो व्रत है इसको रोज रिवाइज करना होता है, एक बार ले लिया उससे काम नहीं होता है, हर दिन, हर अमृत वेला, हर नुमाश्याम, फिर से बार बार पवित्रता के व्रत को रिवाइज, एक वो दृढ़ संकल्प, संकल्पों की इकोनॉमी, थोड़ा सा संकल्पों को काम करना, स्वमान को कैसे बार बार याद करें, उसकी स्वयं युक्ति रचो, कुछ कोई इन्वेंशन करो, खुद ही ढूंढो कि क्या है, कौन सी परिस्थिति आने पर हम खिले हुए गुलाब नहीं रहते, क्यों मुरझा जाते हैं, कौन सी आंधी, कौन से वो तूफान है, और उसमें स्वयं को शक्तिशाली बनाना। ये सारी बातें बाबा ने यहां कही है। और सबसे बड़ा अभ्यास जो है वो अशरीरीपन का अभ्यास, अमृत वेले ज्यादा से ज्यादा ये अभ्यास हमारा बढ़ता जाए, केवल एक घंटा दो घंटा नहीं, ज्यादा से ज्यादा वो बीज रूप स्थिति हो। फरिश्ते बाकी स्थितियां तो है ही, परंतु ज्यादा से ज्यादा अभ्यास बीज रूप स्थिति, ज्वालामुखी योग, अशरीरीपन, निराकारी स्थिति, उसमें स्थित रहने का करना है। क्योंकि निराकारी स्थिति जब होगी तो ही इस विकारों को जीता जा सकता है। पहले निराकारी शब्द है, उसके बाद है निर्विकारी, और फिर अंतिम जो रह जाता है वो फिर भी रह जाता है मैं। उसको एक सेपरेट स्टेटस दिया हुआ है बाबा ने, उसको मैं जो है वो तो विकारों को जीतने के बाद भी खड़ा रहता है कि मैंने सब विकारों को जीत लिया। इसके लिए तीन शब्द है, बहुत ही अद्भुत बात है कि तीन शब्दों में एक शब्द है निराकारी, वो तो ठीक है समझ में आ गया, दूसरा शब्द है निर्विकारी, वो भी समझ में आ गया कि निराकारी स्थिति में रहेंगे तो निर्विकारी, फिर ये निरंकारी की क्या जरूरत थी कि वो तो विकार में आ गया फिर भी उसको एक सेपरेट स्टेटस दिया गया है। निरअहंकारी वो अध्यात्म के मार्ग की अंतिम चोटी है, वो गिर जाए तो आत्मा संपूर्ण हो जाए। वो इतना सूक्ष्म है, इतना सूक्ष्म है, बहुत ही बलवान है, नए नए रूप से, माया जो है वो बहुरूप धारिणी है, कभी छत से कभी कोने से कहां कहां से आ जाती है पता नहीं चलता है, और कैसे गिराकर चले जाती है समझ में नहीं आता, इतना सूक्ष्म है वो, तो संपूर्ण पावन बुद्धि उसे जान सकती है। तो ये आज की मुरली थी, सोने से पहले इसको मन ही मन फिर से रिवाइज करना, क्या क्या सुना, क्या क्या पढ़ा, सुबह क्लास में क्या सुना, और स्वयं को आज रात ही अपने आप को तैयार करना है उससे मिलने के लिए जो कि इस संसार की, इस संसार में जिसे पाना असंभव समझा गया है, संसार में उससे हम मिलने जा रहे हैं। अगर किसी हिमालय के सन्यासी को पता चल जाए कि यहां पर भगवान आ रहे हैं तो क्या हो जाएगा, दौड़ के आ जाएंगे, और हम सम्मुख मिलन, साकार का मिलन, ऐसा मिलन हमारा हो रहा है। अच्छा, ओम शांति।